नमस्कार भारत 3 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। आतंकवाद के प्रसार पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट जारी, कहा आतंकवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देता है ईरान। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अदालत के फैसले पर जकिया जाफरी ने खुशी जताई, लेकिन पूरी नहीं हुई उम्मीद।
बहुत अच्छा फैसला लगा, लेकिन बस यहाँ इतना है कि वो 24 लोगों को उन्होंने सजा दी है और 36 लोगों को बरी कर दिया है, देखिए क्या होता है आगे।
मथुरा में हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल।
500 बीघा से ज्यादा वो जमीन चला गया। प्रॉब्लम यह है जो जमीन जा रहा है, माइग्रेशन तो हो रहा है डेफिनेटली, यहाँ पर लाइवलीहुड अच्छा नहीं है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला देश ईरान है। आतंकवाद पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2015 में दुनिया भर में चरमपंथी हमलों में कमी आई है। इराक, पाकिस्तान और नाइजीरिया समेत आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देशों में 13% कमी आई हुई है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान भारतीय अमेरिकी पूर्व शोध छात्र मैनक सरकार के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक बीते बुधवार को 39 वर्षीय प्रोफेसर विलियम क्लग की गोली मारकर हत्या करने के बाद मैनक ने खुद को गोली मार ली थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे 38 वर्षीय मैनक सरकार ने प्रोफेसर क्लग पर उसकी बौद्धिक संपदा चुराकर किसी और छात्र को देने का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना है कि मैनक के पास एक सूची थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे गए थे जिन्हें वो मारना चाहता था। इस सूची में एक महिला का भी नाम था जिसका शव मिनेसोटा में एक घर से मिला है। लॉस एंजलिस पुलिस के अध्यक्ष चार्ली बेक ने कहा कि संदिग्ध के घर से ये सूची मिली है।
We have named Manak Sarkar as the sole suspect.
हमने मैनक सरकार को इस मामले में अकेला संदिग्ध माना है। मिनियापोलिस में मैनक सरकार के घर की तलाशी में हमें एक सूची मिली है जिसमें प्रोफेसर क्लग और UCLA के दूसरे प्रोफेसर का नाम भी शामिल था। एक महिला का नाम भी इसमें शामिल था जिसका शव पास ही के एक शहर से हमें मिला है। इस सूची को हत्या की सूची का नाम दिया गया था, यही शब्द इस पर लिखे हुए थे। ये थे चार्ली बेक के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान में पुलिस ने कहा है कि जिंदा जलाई गई शिक्षिका की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 19 वर्षीय मारिया बीबी को के परिवार के मुताबिक जब उसने अपने से दोगुनी उम्र के एक शख्स से शादी करने से इनकार कर दिया तो लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे जला दिया था। इस मामले में पुलिस को और लोगों की तलाश है। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग मारिया बीबी के घर में घुस आए और उसे पीटकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा दी थी। बुरी तरह झुलस मारिया बीबी की मौत बुधवार को हो गई थी। फ्रांस और जर्मनी में बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पेरिस में सीन नदी सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही है। माना जा रहा है कि आज इसमें 6 मीटर का इजाफा हो सकता है। पेरिस के मशहूर लूअर और ओरसे संग्रहालयों को बंद किया गया है ताकि वहां रखी गई बेशकीमती कलाकृतियां सुरक्षित जगहों पर पहुंचाई जा सके। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। आज है शुक्रवार और हर शुक्रवार को आप सुनते हैं वाशिंगटन से BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की डायरी। क्या है आज इस डायरी में, हम सुनेंगे कुछ देर के बाद। BBC संवाददाता सलमान रावी की सुंदरबन से खास रिपोर्ट, गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अदालत के फैसले पर जकिया जाफरी की प्रतिक्रिया और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से छपने वाले समाचार पत्रों की सुर्खियां भी जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत एक सालाना रिपोर्ट से जिसे अमरीका का विदेश विभाग जारी करता है। इस रिपोर्ट में ईरान को आतंकवाद को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला देश बताया गया है। मैंने कुछ देर पहले वाशिंगटन फोन करके हमारे सहयोगी ब्रजेश उपाध्याय से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में चरमपंथ की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है।
इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया अभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का फ्रंट लाइन बना हुआ है। इसमें पाकिस्तान पर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई से अलकायदा कमजोर हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान में जो कई हमले हुए हैं उन्हें पाकिस्तान में मौजूद सुरक्षित पनाहगाहों से अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में पाकिस्तान में भी आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आई, लेकिन स्कूलों और दूसरे ऐसे ठिकानों को चरमपंथियों ने निशाना बनाना जारी रखा। और विदेश विभाग का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संचालित करने वाली जो एजेंसी है पेमरा, उसने लश्कर ए तैयबा से जुड़े दोनों संगठन यानी जमात उद दावा और फलाह इंसानियत के मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने उनके चंदा जुटाने की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई। और रिपोर्ट के अनुसार लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ही पाकिस्तान में सक्रिय हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और पैसा जुटा रहे हैं। हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी कहलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ जैसी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिशों में मदद की है। रिपोर्ट में बांग्लादेश का भी जिक्र है कि वहां आतंकवाद के मामलों में तेजी रिकॉर्ड की गई है और वहां अलकायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों ही ने विदेशियों, अल्पसंख्यकों और जिन्हें धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर ब्लॉगर्स कहते हैं उन पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। और यह कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमरीका के बीच सहयोग में काफी तेजी आई है।
ये तो हुई दक्षिण एशिया में चरमपंथ की स्थिति के बारे में बात, और ये बताएं कि दुनिया के बाकी हिस्सों के बारे में क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में?
देखिए, इस रिपोर्ट में पहले के सालों की तरह ही अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान को आतंकवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला देश कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने परमाणु मामलों पर जरूर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समझौता किया है, लेकिन उसने हिजबुल्ला और दूसरे चरमपंथी संगठनों को आर्थिक मदद और प्रशिक्षण देना जारी रखा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 2015 में आतंकवाद के मामलों में पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2014 के मुकाबले 13% की कमी देखी गई, लेकिन उसके खतरे में कमी नहीं आई है और खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन ने अपनी पहुंच और बढ़ा ली है। रिपोर्ट के अनुसार इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों में कमी आई है, लेकिन पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा उसी से है और इस्लामिक स्टेट ने तुर्की, फ्रांस और लेबनान में हमलों को अंजाम देकर अपनी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय ताकत का इजहार किया है।
ब्रजेश जी, अमरीका से ही एक और खबर आ रही है जो कहती है कि ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या करने वाले छात्र की पहचान भारतीय अमेरिकी शोध छात्र के तौर पर हुई है, इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास?
देखें, पुलिस के अनुसार 38 साल के मैनक सरकार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं और उनके घर से एक किल लिस्ट या मारने वाले लोगों की सूची बरामद हुई है, जिसमें एक महिला और यूसीएलए के दो प्रोफेसर्स का नाम है। बुधवार को उन्होंने कथित रूप से इनमें से एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर खुद को गोली मार ली। और पुलिस का कहना है कि उनका अंदाजा है कि मैनक सरकार दूसरे प्रोफेसर को भी मारना चाहते थे, लेकिन कैंपस में वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। और मैनक सरकार ने जहां पर प्रोफेसर को गोली मारी, पुलिस के अनुसार उन्होंने वहीं पर किल लिस्ट की एक पर्ची छोड़ी थी और उसमें यह भी लिखा था कि जो भी उसे पढ़े वो मिनेसोटा राज्य में उनके घर पर उनकी बिल्ली का ख्याल रखे। और पुलिस जब मिनेसोटा पहुंची तो उन्हें पूरी योजना की लिस्ट भी मिली और जब वो लिस्ट में शामिल उस महिला के घर पहुंचे तो उसे भी मरा हुआ पाया। पुलिस का कहना है कि मैनक सरकार ने उस प्रोफेसर के खिलाफ अपने ब्लॉग में लिखा था और उन पर अपने कंप्यूटर कोड चुराकर दूसरे छात्र को देने का आरोप लगाया था, लेकिन जान लेने की धमकी कभी नहीं दी थी। और अमेरिकी मीडिया के अनुसार मैनक सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की और फिर यूसीएलए में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे।
ये थे बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। और आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक वॉशिंगटन डायरी, एक बार फिर ब्रजेश उपाध्याय।
पिछले एक साल में 16 उम्मीदवारों को धूल चटाकर रिपब्लिकन उम्मीदवारी हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इस हफ्ते एक 370 किलो के गोरिल्ला से टक्कर लेनी पड़ी। हाथापाई वाली टक्कर नहीं, बल्कि अमरीकी टीवी चैनलों पर जगह हासिल करने की टक्कर। इन दिनों सुबह से देर रात तक अमरीकी टीवी चैनलों पर सिर्फ एड ब्रेक के दौरान ट्रंप का नाम नहीं सुनाई देता है, बाकी तो हर वक्त ट्रंप ही ट्रंप। लेकिन इस हफ्ते गोरिल्ला उन पर भारी पड़ रहा था। हर आधे घंटे की न्यूज साइकिल में या तो ट्रंप थे या फिर बेचारा गोरिल्ला जिसे सिनसिनाटी शहर के चिड़ियाघर में गोली मार दी गई। अब तक तो आपने उस हट्टे कट्टे गोरिल्ले का वीडियो देख ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा तो कहानी ये थी कि उसके पिंजड़े में एक 3 साल का बच्चा गिर पड़ा। करीब 10 मिनट तक गोरिल्ला कभी उसे घसीटता तो कभी बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह संभालता, लेकिन गोरिल्ले को देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो गुस्से में है, चिड़चिड़ा रहा है या फिर बच्चे के साथ यूं ही खेल रहा है। चिड़ियाघर चलाने वालों को लगा कि गोरिल्ला पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे गोली मार दी गई, तो टीवी चैनलों पर वही वीडियो बार बार दिखाकर ये बहस चल रही है कि क्या गोरिल्ले पर भरोसा किया जा सकता था, गोरिल्ला गुस्से में क्या करेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था, क्या बच्चा उसके साथ सुरक्षित था। ठीक उसी तरह बहस इस बात पर भी हो रही है कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है, वो गुस्से में क्या कहेंगे क्या करेंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या अमरीका उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। ट्रंप और गोरिल्ला दोनों ही टीवी रेटिंग के लिए बेहद अच्छे हैं, तो चैनल वाले बड़े आराम से बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और ट्रंप और गोरिल्ले का मुकाबला भी सही चल रहा है। अब देखिए, अगर गोरिल्ले को ये लगता है कि उस पर कोई हमला कर रहा है या करने वाला है तो वो उस पर टूट पड़ता है। कुछ उसी अंदाज में ट्रंप भी अपनी आलोचना या तीखे सवालों के जवाब में लोगों पर टूट पड़ते हैं। पिछले दिनों उन्होंने रिटायर्ड फौजियों के लिए अपनी एक रैली में $60 लाख का चंदा जमा करने का ऐलान किया, खूब वाहवाही लूटी और रिपब्लिकन उम्मीदवारी के रेस में भी उसका फायदा उठाया। लेकिन 4 महीने बाद जब रिपोर्टरों ने उसकी पड़ताल करनी शुरू की कि पैसे गए कहाँ, बेचारे फौजियों को मिले क्यों नहीं, तो ट्रंप मीडिया पर बिफर पड़े। एक रिपोर्टर को तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही झूठा घटिया सब कुछ कह डाला। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी शुरू की थी जिसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर हुआ है कि लोगों से गलत वादे करके उनसे पैसा वसूला गया। जिस जज ने मुकदमा दायर करने की इजाज़त दी ट्रंप उस पर भी बरस रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने ये भी कह दिया है कि जज मेक्सिकन मूल का है इसलिए वो उनके खिलाफ है। ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने ये भी पूछ लिया कि वो होते तो गोरिल्ला के साथ क्या करते। अमरीका के राष्ट्रपतियों को कितने मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं ना, और उस रिपोर्टर ने उन पर चिड़ियाघर चलाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पर रिपोर्टर की शामत आ गई, बहुतों ने कहा कि गोरिल्ला के साथ साथ पत्रकारिता को भी दफनाने की जरूरत आ गई है। खैर, ट्रंप साहब ने बड़ा सोच विचार कर राष्ट्रपति की तरह जवाब दिया। देखने में तो गोरिल्ला शांत लग रहा था, बच्चे के साथ माँ की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी लग रहा था। बस एक उंगली दबाता और बच्चे के साथ शायद कुछ भी हो सकता था, इसलिए उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। अमरीकी राष्ट्रपति की उंगली भी एक ब्रीफकेस पर होती है जिसमें अमरीका के तमाम परमाणु हथियारों की कुंजी है, यानी अगर उंगली दब गई तो दुनिया तबाह। तो गोरिल्ला के गुस्से पर होने वाली बहस से फुर्सत मिलते ही टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है कि ट्रंप जिस तरह गुस्से में आपा खो बैठते हैं, क्या उनके हाथ में अमरीका के परमाणु हथियारों के कोड वाला ब्रीफकेस सौंपा जा सकता है। चिड़ियाघर वालों को तो जब अपने सवालों का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बेचारे गोरिल्ला से पीछा छुड़ाने में ही भलाई समझी। लेकिन ट्रंप रिपब्लिकन जनता की पसंद है व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए, और पार्टी लाख कोशिशों के बाद भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकी है। अगर व्हाइट हाउस पहुंच गए तो कहा जा रहा है कि अमरीकी जनता को भी इसी उम्मीद के साथ रहना होगा कि ट्रंप जो भी करें बस गुस्से में ना आए, वरना एक उंगली की हेर फेर से आगे क्या कहूँ। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अदालत के फैसले पर ज़किया जाफरी क्या कह रही हैं और गुजरात के अखबारों में ये खबर किन शब्दों में छपी है। लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की, जहां कल भड़की हिंसा में घायल हुए एक सर्किल ऑफिसर और एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी ने दम तोड़ दिया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए लखनऊ में हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, बताएं और क्या जानकारी है आपके पास?
जी संदीप, जैसा आपने बताया कि एक SP सिटी मुकुल द्विवेदी की भी देर रात मृत्यु हो गई, और देर रात जो उत्तर प्रदेश के ADG कानून व्यवस्था है वो वहां पहुंचे और उन्होंने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। इससे पहले ही SO संतोष यादव की मृत्यु हो चुकी थी घटनास्थल पर ही, और रात भर सर्च ऑपरेशन चला ये जवाहर बाग जहाँ पे ये घटना हुई आगजनी और फायरिंग की वहां पे। और तो दलजीत चौधरी ने ADG लाइन ऑर्डर ने बताया कि 12 शव मिले हैं प्रदर्शनकारियों के भी, 12 यानी उनकी भी मृत्यु हुई है और अभी भी उनकी तलाश जारी है। और इस जो जो संगठन है स्वाधीन भारत विधिक संगठन, जिसके सदस्यों ने, जिसके लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस के साथ जिनकी मुठभेड़ हुई, उसका जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य उनके नेता है रामवृक्ष यादव, वो फरार बताए जा रहे हैं और उनके एक साथी फरार बताए जा रहे हैं। तो और डीजीपी भी, आज प्रदेश के डीजीपी भी मथुरा में पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा लेंगे। सरकार ने जांच, घटना की जांच आगरा मंडल के कमिश्नर प्रदीप भटनागर को सौंपी है।
समीर, हमारे श्रोता यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि मथुरा में ये जो हिंसा हुई है उसके पीछे आखिर वजह क्या रही।
वजह ये थी, ये लगभग 100 एकड़ की जमीन है जो जवाहर बाग जिसको कहते हैं, जहां पर ये घटना हुई है, इस पर कब्जे को ले, कब्जा क्या कहा जाए, जो प्रदर्शनकारी हैं ये पिछले काफी दिनों से 2-3 साल से वहां धरना दे रहे हैं और उस धरने की हालांकि इनको 2 दिन की परमिशन मिली थी, लेकिन ये लगातार उसको चला रहे हैं और वहां से इनको हटाने का कोर्ट की ओर से भी नोटिस था। 2 दिन पहले प्रशासन ने कहा था कि आप यहां से हटे और लगभग 2500-3000 की संख्या में लोग बताए जाते हैं कि वहां पे ये लोग धीरे धीरे 2-3 साल में इकट्ठे हो गए थे। इनको वहां से हटाने के लिए ही ये नोटिस प्रशासन ने दिया था और कल प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के लोग वहां पे एक तरह से स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे और ये कि इनको कैसे हटाया जाए। तभी प्रदर्शनकारियों की ओर से वहां फायरिंग हुई, आगजनी हुई, पथराव होने लगे और उसी दौरान ये करीब 4-5 अधिकारी जो थे घायल हुए। कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जो घायल है अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये थी पूरी घटना की शुरुआत जो कल हुई है।
बहुत शुक्रिया। ये थे लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र। और अब बात गुजरात की, और गुजरात का जिक्र मैं कर रहा हूँ, वहाँ शीशे के उस पार बैठे हमारे तकनीकी सहयोगी हेमंत कुशवाहा मुझे इशारा कर रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान मैंने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद कह दी थी, जो गलत है, राजधानी गांधीनगर है। बहरहाल माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और इस वक्त कार्यक्रम में अहमदाबाद से अंकुर जैन हमारे सहयोगी शामिल हो रहे हैं, उनके पास चलेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले बात गुलबर्ग सोसाइटी की, जहां पर गुजरात दंगों के दौरान 69 मुसलमानों को जान से मार दिया गया था। इस मामले में कल एक विशेष अदालत ने 24 लोगों को दोषी ठहराया और हमारे सहयोगी अंकुर जैन ने ही गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी से बात की और अदालत के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए।
बहुत अच्छा फैसला लगा, लेकिन बस यहाँ इतना है कि वो 24 लोगों को उन्होंने सजा दी है और 36 लोगों को बरी कर दिया है। देखिए क्या होता है आगे।
आपने अपने कई इंटरव्यू में कल कहा कि आपके लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है और आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी।
ठीक बात है, क्या वो मैंने ये कहा तो है कि, लेकिन अब जब मेरे जो वकील है, मेरे बड़े जो है, वो क्या राय देते हैं, अगर वो बोलेंगे तो उसके बाद फिर और आगे कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ में मेरे बेटे हैं ना।
गुजरात पुलिस के कई अफसरों ने ये बात कही है अपनी स्टेटमेंट में कि गुलबर्ग सोसाइटी में जो दंगे हुए थे वो दंगे का कारण था कि मरहूम कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी ने फायरिंग शुरू की थी। कितनी सच्चाई है जो पुलिस कह रही है?
उस वक्त तो वहाँ पर 5-5 हजार के टोली और सब इतने सब लगे हुए थे और हमारे पास ऐसा कोई, उन्होंने फायरिंग किया ही नहीं, ये उन पे झूठा इल्जाम लगाया है उन लोगों ने, ये सब गलत बात। हमारे पास तो घर के अंदर भी इतने सब लोग भरे हुए थे कि चलने की जगह भी नहीं थी, तो हम कहाँ से वो फायरिंग करते, कहाँ कारतूस होगी, कहाँ बंदूक होगी, कोई ठिकाना नहीं था वहाँ पर। ये गलत इल्जाम उन्होंने लगा दिया उनके ऊपर। फायरिंग चलो बाद में हुई, फ्लोरे तो पहले से ही जमा थे वहाँ पर, लेकिन फिर वो बन के ऐलान में 300-400-500 के टोले कहाँ से आ गए, ये मेरी समझ में नहीं आती। ये सब उनकी राजनीतिक थी, पहले से सब उनका सोचा समझा कार था।
आज जब उस मंजर को आप याद करती हैं, अब क्या मंजर है वहाँ पर गुलबर्ग सोसाइटी?
वहाँ का मंजर तो बस आप पूछे ही मत, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वहाँ का मंजर, क्योंकि जो 19 बंगले थे और दूसरे जो थोड़े घर अलग से ऊपर बने हुए थे फ्लैट, उनकी आप कंडीशन देखेंगे जाकर तो आपके आंखों से खून के आंसू बहेंगे। वहाँ रहने जैसा है नहीं, 2-2, 3-3 फुट की घास ऊपर उग रही है, इतना खराब मंजर है वहाँ का सोसाइटी का। 15 साल में तो आप अंदाज लगा लीजिए क्या हालत होगी वहाँ पर।
इन दंगों के पहले गुलबर्ग सोसाइटी जो है और ये इलाका जो है गुलबर्ग के आसपास का, क्या इस तरह के वाक्या पहले हुए थे? क्या दंगे आपके इलाके में आम थे?
नहीं, कभी भी नहीं हुए। अब हम तो जाफरी साहब तो वहाँ पर बहुत छोटे से थे जब से वहाँ पर रहते थे। अगर ऐसा वहाँ पर पहले से हुआ होता तो वहाँ पर वो ये गुलबर्ग सोसाइटी बनाते ही नहीं। पहले तो वहाँ पर आजू बाजू दूसरी जगह रहते थे, फिर उन्होंने ये जगह लेकर ये गुलबर्ग सोसाइटी बनाई थी। हाँ, एक मतलब 69 में जो था तो वहाँ पर हुआ था बना, उसके बाद फिर कभी हुआ नहीं था। सब अच्छी तरह से रहते थे वहाँ पर सब।
गुलबर्ग सोसाइटी मामले में जकिया जाफरी से बात कर रहे थे अंकुर जैन, और अंकुर जैन अब कार्यक्रम में अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अंकुर, अहमदाबाद से छपने वाले अखबारों में गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अदालत के फैसले की खबर किन शब्दों में छपी है?
बिल्कुल संदीप, आज सुर्खियों में अहमदाबाद के तमाम अखबारों में गुलबर्ग सोसाइटी का जो कोर्ट का जो आदेश था कल, उसी की खबर अहम है। अहमदाबाद से छपने वाले संदेश जो अखबार है, गुजराती अखबार है, इसमें इस खबर को लिया गया है कि गुलबर्ग हत्याकांड 14 वर्ष 24 दोषित 36 निर्दोष। तो ये जो खबर है कि इस खबर को लेके कि 14 साल बाद इस केस में कोर्ट का आदेश आया है और इसमें कितने दोषित हैं और कितने निर्दोष हैं, इस खबर को अहम दिया गया है। और वहीं जो गुजरात से छपने वाला दूसरा दिव्य भास्कर अखबार है, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया कि पूर्व नियोजित कावतरू नौतू कोर्ट, जो कोर्ट ने कहा है कि गुलबर्ग हत्याकांड जो था वो पूर्व नियोजित कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इस बात को हाईलाइट करते हुए पूरे इश्यू को कवर किया गया है। वहीं गुजरात समाचार जो है, जो अगला गुजरात से छपने वाला, अहमदाबाद से छपने वाला गुजराती अखबार है, उसमें इस बात को तो तवज्जो दिया ही है कि निर्दोष कितने थे और कितने लोग को अभियुक्त किया है। वहीं इस बात को भी दिया है कि जो परिवारजन है जो गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे, वो कह रहे हैं कि गोधरा कांड में थई तेवी गुलबर्ग केस में सजा थवी चाहिए, कि गोधरा ट्रेन हत्याकांड में जिस तरह की सजा हुई थी उसी तरह की सजा गुलबर्ग सोसाइटी में भी होनी चाहिए। और सभी तीनों अखबारों में इस बात को भी तवज्जो है कि अब 6 जून को सोमवार को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। वहीं संदीप, अहमदाबाद से जो अंग्रेजी अखबार छपते हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को अहम लिया है कि 11 कन्विक्टेड फॉर किलिंग 69 इन 2002 गुलबर्ग मैसेकर। वहीं इस खबर के साथ उन्होंने एक इकलौता अखबार है जिसने तीसरा सेतल वार्ड का भी पूरे मामले में, आप जानते हैं कि तीसरा सेतल वार्ड की काफी कंट्रोवर्सी रही है इस पूरे मामले में, उसको उनको हाईलाइट करते हुए उनका एक कमेंट लिया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है, उन्होंने इस खबर को कवर किया ही है, साथ में जाकिया की फोटो ली है, जाकिया जाफरी की, जो टीवी देख रही है और टीवी पे इस केस का जो जजमेंट है वो आ रहा है, और वो कह रही है कि वो पूरी रात जगी हुई थी इस जजमेंट से पहले और रो रही थी और सोच रही थी कि न जाने 14 साल बाद अब जो ये कोर्ट का जजमेंट आने वाला है उसमें क्या आएगा। और इस खबर को लिया है कि 24 कन्विक्टेड 36 एक्विटेड इन सेकंड वर्स्ट मैसेकर ऑफ गुजरात 2002 राइट्स, जैसे कि दूसरा सबसे नरोडा पाटिया के बाद भयानक हादसा था, तो उसको कवर किया गया है कि इस केस में अब 14 कन्विक्ट हुए हैं और 36 एक्विट हुए हैं। वहीं इस खबर को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में दूसरी भी खबर है कि जो सीएम मोदी, तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उनको भी इस केस में ट्रायल किया गया था, उस बात को भी तवज्जो दिया है।
बहुत शुक्रिया। गुजरात के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ ये थे अंकुर जैन।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक विशेष रिपोर्ट। सुंदरबन का नाम स्कूलों की किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोग वहां घूमने भी गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन के इलाके में 100 से ज्यादा टापू हैं, मगर उनमें से आधे से कम टापुओं पर इंसान बसता है, इंसान रह पाता है, और जिन टापुओं पर इंसान रहते भी हैं वो टापू भी जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार डूबते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं सुंदरबन से सलमान रावी की ये खास रिपोर्ट।
रुआनु तूफान बंगाल की खाड़ी में तेजी से बांग्लादेश की तरफ बढ़ा है। समंदर में ऊंची लहरें और तेज हवाओं ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के इलाके में लोगों को अपने घरों के अंदर ही महदूद कर रखा है। सुंदरबन में इस तूफान का उतना असर तो नहीं है जितना कि बांग्लादेश में हुआ है, मगर यहाँ लोग डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं एक ऐसी अनहोनी की आशंका में जो उनकी ज़मीनें निगल रही है। यहाँ कई टापू ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बंगाल की खाड़ी में समाते जा रहे हैं। दिनों दिन यहाँ स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है क्योंकि समंदर का जल स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। सुंदरबन सोशल डेवलपमेंट सेंटर के गोपाल प्रमाणिक कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है।
लास्ट 10 ईयर्स अनेक बेशी परिवर्तन হচ্ছে। অনেক আইল্যান্ড এরকম শেষ হতে বসেছে। আর এর মূল কারণ হচ্ছে
गोपाल प्रमाणिक कह रहे थे कि सुंदरबन में कई टापू हैं जिन्हें समंदर निकलता चला जा रहा है और पिछले 10 सालों में यह सिलसिला थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। समंदर का जल स्तर बढ़ा है और उसकी वजह से यहाँ की नदियों में खारापन भी बढ़ रहा है। बांध बनाकर जमीन को बहने से रोकने के प्रयास तो हो रहे हैं, मगर समंदर की तेज धार जमीन को नीचे नीचे खाती चली जा रही है। तूफान की वजह से उन टापुओं पर जाने की इजाजत नहीं थी जहां जमीन का कटाव बहुत ही तेजी से हो रहा है। पाथर प्रतिमा ब्लॉक के पास स्थित कुछ टापुओं का जायजा लेने के लिए मैं एक लॉन्च पर सवार हुआ तो समझ में आया कि यहाँ के मछुआरों के गीतों में क्यों इतना दर्द है। इस टापू के रहने वाले ग्रामीण बता रहे हैं कि भारी कटाव की वजह से उनकी कई एकड़ जमीन जलमग्न हो चुकी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। सुंदरबन के टापुओं पर रहने वाले ग्रामीण अब अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो चारों तरफ बड़े पैमाने पर मैंग्रोव लगाने का काम कर रहे हैं जिससे जमीन के कटाव को रोका जा सके। एक टापू से दूसरा टापू, सब जगह एक जैसे हालात और एक ही जैसा दर्द। पश्चिम सुरेंद्र नगर के एक टापू की रहने वाली महिलाओं के एक समूह से मेरी मुलाकात हुई।
ना 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 हमारे किछु दे ना
किछु दे नहीं
ना
আপনার কাছে জমি
হ্যাঁ
কত জমি আছে আপনার নাম কি
কত জায়গা
2 বিঘে মত এটা
আপনার কত
আমার 1.5 বিঘে 2 বিঘে মত
গ্রামীণ মহিলাएं बता रही थीं कि सभी की 1-2 एकड़ जमीन पानी में समा चुकी है जिसका कोई मुआवजा उन्हें नहीं मिला है और अब उन्हें सरकारी तंत्र से कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए अब वो खुद ही मैंग्रोव लगाने का काम कर रही हैं ताकि जमीन को किसी तरह से बचाया जा सके। वायु परिवर्तन की मार झेल रहे सुंदरबन के लोगों के बीच काम कर रहे सुमेन विश्वास स्थिति की नाजुकता बयान करते हुए कहते हैं,
हमारा जो ये पाथर प्रतिमा ब्लॉक है ना, इसका जो 15 जी आइलैंड है, अभी देखो तो 500 बीघा से ज्यादा वो जमीन चला गया। प्रॉब्लम यह है जो जमीन जा रहा है, माइग्रेशन तो हो रहा है डेफिनेटली, यहाँ पर लाइवलीहुड अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो यहाँ पर लोग चला जाता है। एक दिन आइलैंड नहीं रहेगा, वो सब डूब जाएगा और पानी बड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी 102 आइलैंड है और 52 आइलैंड में वो सब पीपल रहते हैं। और यहाँ पे जो
शोधकर्ता और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जमीन को बचाने का काम युद्ध स्तर पर नहीं शुरू किया गया तो वो समय दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के इलाके में एक भी टापू बाकी न बचे। सलमान रावी, BBC, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल।
नमस्कार भारत में इतना ही। खेल समाचार अगले कार्यक्रम में विस्तार से। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक एक घंटे के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।